Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी पूरी सीरीज चलती आ रही है एक्सपेरिमेंट्स विद राजयोगा मेडिटेशन पर। हम धीरे धीरे मानते आ रहे हैं कि हर एक रिलेशनशिप जो हमारी ज़िंदगी में होता है वो कहीं ना कहीं एक नया इमेज क्रिएट करता है हमारा खुद का। हर रिलेशनशिप के साथ में हम अलग तरह से बिहेव करते हैं क्योंकि हमारा हर व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन अलग होता है। आज हम डील करने वाले हैं बच्चों के साथ जो कि टीन्स हैं। हम देखेंगे कि उनकी क्या इच्छाएं होती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या पेरेंट्स को उनके प्रति क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए और किस तरह से उन्हें अपब्रिंगिंग करना चाहिए। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं बीके सतीश गुप्ता जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ब्रदर, हमने काफ़ी सारी बातों को हर दिन समझते जा रहे हैं और आपकी बातों से हम काफ़ी कुछ सीखते जा रहे हैं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ टीन एज बच्चों की, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एज है क्योंकि बच्चे इस समय पर बच्चे खुद को बच्चा बुलवाना भी पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि हम बड़े हो चुके हैं, लेकिन पेरेंट्स की नज़र में वो तो बच्चे हैं अभी भी। तो ये जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है दो जनरेशन्स के बीच में, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए?
सी बेसिकली ये सारे हार्मोन्स की बातें हैं। जैसे बच्चा 11 साल की उम्र तक तो उसकी फेज है ओरल फेज, साइकोलॉजी के सबसे पैसिव फेज ऑफ लाइफ है। जो कुछ पेरेंट्स में देखता है, जो कुछ अपने आसपास के वातावरण में देखता है, भाई बहन में देखता है, टीचर्स में देखता है, और जिस चीज़ में उसको रिवार्ड मिलता है, रिवार्ड में ना जहाँ उसको लगता है कि यहाँ विजय होती है, यहाँ ऐसा करने से सक्सेस मिलती है, जो पेरेंट, जो फादर कर रहे हैं या मदर कर रही है, टीचर कर रहे हैं, उसके कुछ फ्रेंड्स कर रहे हैं या बड़ा एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर कर रही है, तो उसको देख के समाज में कहीं भी लगता है कि ये सक्सेस का तरीका है। चाहे गुस्सा करना है, चाहे चिंता करना है, चाहे रोना है, चाहे मूड ऑफ कर लेना है ताकि दूसरों का टेंशन आपकी तरफ जाए,
करेक्ट,
और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएं उस कार्य में, तो वो सब बच्चा इम्बाइब करता है पैसिवली। और वो इम्बाइब करता है क्योंकि हमारे जो रिवार्ड सेंटर स्टिमुलेट होता है, हमारे अंदर रिवार्ड सेंटर होता है। जितनी भी सक्सेस वाली बातें हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लास्ट टाइम भी दिया था कि अगर मान लीजिए हम माता पिता बैठे हैं, भाई बैठा है, उसका बहन बैठी है और वो छोटा है, 3-4 साल का बच्चा है, और माँ ने कुछ कहा ये काम करो, दूसरे मतलब बच्चों दूसरे भाई बहनों को कहा, वो सुनते नहीं, पिताजी ने गुस्सा किया, काम हो गया, तुरंत भाग के काम हो गया।
Correct.
फिर स्कूल में देखता है, स्कूल में भी ऐसा होता है, टीचर गुस्सा करता है, सब काम सब सीधे होकर बैठ जाता है, तो उसके मन में लगता है गुस्सा करने से काम अच्छा होता है।
करेक्ट।
ऐसा ही माँ के बारे में देखता है तो माँ कई बार बातें हो रही होती हैं, कुछ वो सब कोई मानता नहीं है, पिताजी भी डांट लगा देते हैं, तो फिर माँ थोड़ा रोके दिखाती है तो सब काम होने लगता है। इसी तरह से मतलब जीवन में जहाँ जहाँ वो देखता है बचपन, तो 11 साल की उम्र तक हमारी पर्सनैलिटी बन चुकी होती है।
ओके।
सम टोटल ऑफ वॉट एवर ही हैज बीन एक्सपोज टू और शी हैज बीन एक्सपोज टू, वो सारा उसका सम टोटल एक पर्सनैलिटी बनती है। उसके बाद 12 साल की उम्र में हार्मोन निकलने शुरू होते हैं 11 साल के बाद।
okay.
और उसके बाद लड़की या लड़का, जो मतलब जो भी है, मेल या फीमेल, वो मेल फीमेल बनने लगता है। उसके पहले मेल फीमेल जैसा बिहेवियर नहीं होता। एक बच्चा बच्चा होता है तो मेल मेल बनने लगता है, उसकी दाढ़ी मूछ थोड़ी थोड़ी शुरू होती है, मूछें आने शुरू होती हैं, उसकी जो बॉडी है डिफरेंट शेप लेने लगती है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, फीमेल में फीमेल जैसा शक्ल होने लगती है, बॉडी में भी चेंजेस आने लगते हैं, हार्मोन्स बदलने लगते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें अंदर से नई चेंजेस होते हैं।
Correct.
तो वो डेवलपमेंट, जो नई डेवलपमेंट होती है बॉडी में, उसके साथ हार्मोन्स का कनेक्शन होता है, तो हमारे हार्मोन्स बदलते हैं, और वो ऐसी फेज है, बच्चा खुद अपने आप में एक ऐसे अंदर शरीर में परिवर्तन हो रहे होते हैं, वो खुद भी कन्फ्यूज होता है, उसकी बॉडी में अचानक चेंजेस शुरू हुए।
करेक्ट।
सोच बदल रही है, उसका आउटलुक बदल रहा है, पहले था आउटसाइड इन अप्रोच थी, मतलब वो क्या था, बाहर से देख रहा था और अपने इम्प्रेस होके उसको फॉलो कर रहा था।
करेक्ट।
अभी उसका अपना माइंड रीजनिंग करना शुरू करता है। 11 साल की उम्र से पहले रीजनिंग नहीं करता है। माँ बाप ने जैसा कहा, टीचर ने कहा, पैसिवली मान लेता है और उसको एक्ट कर लेता है। अभी उसका माइंड रीजन करता है कि उसने भी देखा है पीछे, तो अब उसके इम्प्रेशन बन चुके हैं। जैसे हमने बताया ना, थॉट्स, जब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, थॉट्स, कुछ भी चीज़ देखते विचार उठता है, विचार अगर वही चीज़ बार बार देखते हैं, अभी तक वो कुछ बार देख चुका है, तो बार बार देखने से इंटेंस थॉट्स तो इमोशंस बन जाता है। कोई चीज़ को बार बार देखने से अभी हमारा इमोशनल चेंज हमारे अंदर आ गया है। इमोशन, उस इमोशंस को प्रोलॉन्ग करते हैं तो हमारा एटीट्यूडनल चेंज हो जाता है, हमारा एटीट्यूड बदल जाता, वृत्ति बदल जाती है।
करेक्ट।
वो वृत्ति से वायुमंडल बन जाता है
और वही हमारे ऑरा भी बन जाता है।
वही वृत्ति में ना, वायुमंडल में ना ऑरा, वो हमारा हवामंडल बन जाता है।
करेक्ट।
वो हवामंडल हमें, मतलब उसके हम उससे, वो उस हवामंडल से हमें, हमें भी फर्क पड़ता है, दूसरों को भी फर्क पड़ता है। राइट।
करेक्ट।
तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है, जब इमोशंस, इमोशन मेरे चेंज होते हैं तो वाइब्रेशन निकलते हैं। राइट। तो इससे क्या होता है, मेरा असर दूसरों पर पड़ने लगता है और दूसरों का असर मेरे ऊपर पड़ने लगता है।
दूसरों का असर कैसे,
मतलब उनका भी तो हवामंडल होता है ना।
अच्छा, ओके।
जैसे मेरी मदर है,
भी है और है,
उनका मेरे मदर है,
करेक्ट,
मदर है या फादर है या कोई फ्रेंड है या टीचर है, उनका भी अपना हवामंडल है।
करेक्ट।
तो उनका हवामंडल कैसा है और मेरा हवामंडल खुद डेवलप होने लगता है, तो अब वो दोनों का टकराव होता है। अगर हम दोनों एक साथ, हमें सोच एक जैसी है, इमोशन एक जैसे हैं, तो अतः हवामंडल कन्फ्लुएंस होकर के हम, मतलब एक हमारी एक आपस में घनिष्ठता बन जाती है, हम इसको समझ सकते हैं। और किसी के अपोजिट हो तो
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समझ
क्या
नहीं
होगा, एक दूसरे को कट कर देंगे हवामंडल को,
बिल्कुल,
तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। राइट।
करेक्ट।
तो इसमें इसी तरह से होता है, जैसे पेरेंट्स के साथ यूजली क्या होता है, पेरेंट्स का एक हवामंडल होता है बच्चे के प्रति, है ना, कि बच्चा मेरा है, ये मेरे कहना मानता है, बहुत अच्छा बच्चा है, किंतु बच्चे के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं माँ बाप समझ नहीं पा रहे, तो वो सोच रहे वही छोटा बच्चा है।
करेक्ट।
जबकि वो एक मेल, मेल में ग्रो कर रहा है, एडल्ट बन रहा है, अभी वो बच्चे से एडल्ट बन रहा है, और फीमेल है जो वो भी एक एडल्ट बन रही है।
करेक्ट।
राइट। बच्ची, बच्ची जो है, बच्ची थी वो जो एडल्ट बन रही है, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सोच भी बदल रही है।
करेक्ट।
अब वो क्या कर रही है, अब वो अंदर से कुछ भी देखती है, अब सोचती है या सोचता है, उसको फिर पिछले एक्सपीरियंस से, अपनी पर्सनैलिटी से चेक करता है कि मैं करूँ कि ना करूँ। इससे मुझे, मैंने देखा इससे, तो मान ली कोई कहे आपको 12 साल की उम्र, 13 साल की उम्र में, अभी तक आपने देखा गुस्से के, गुस्से से काम होता है, अभी कोई आपको कहता है बेटा प्यार से काम करो, प्यार से बोलना चाहिए, प्यार से बोलो तो अच्छा, सब काम अच्छा हो जाएगा, वो इस बात को समझ ही नहीं सकता है।
करेक्ट।
कि उसे देखा गुस्से के फिर काम ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं हुआ था अभी तक, अभी सोचता है नहीं नहीं ये गलत बोल रहे, अभी वो रिएक्शन करता है इस बात पर।
क्योंकि डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये ऐसा एज है जहाँ पर हम हर चीज को क्वेश्चन करते हैं।
यस। क्योंकि हमारे अंदर जो ऑलरेडी हमारा एक्सपीरियंस है ना, जो
करेक्ट, तो कंडीशनिंग जो थी, एक आवाज उसकी आती है और दूसरी आवाज आती है हमारी खुद की थॉट प्रोसेस की, कि हमको क्या सही लगता है और एक्चुअली में रियलिटी क्या है, ये दो अलग चीजें होती हैं। अब ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर साहब, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस भी है ये एक तरीके का, तो ऐसे सिचुएशन में हमें एज अ पेरेंट ये भी जानने की जरूरत है कि मेरा जो बच्चा है उसे रिस्पेक्ट की भी जरूरत है।
ये बिल्कुल,
क्योंकि
बिल्कुल,
अभी तक हम ये करते आए कि हम उनको अपने इशारों पर एक तरीके से चलाते आए, लेकिन अब वो खुद के डिसीजंस भी लेना शुरू कर रहा है, तो उसे थोड़ा सा स्पेस देना ये कितना जरूरी है।
देखिए ऐसा है, 11 साल की उम्र तक आप बच्चे को ऑर्डर कर सकते हैं, कह सकते हैं बच्चा ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसा करो, करेगा।
करेक्ट।
11 साल के बाद आप बच्चे से मत कहो कि बेटा ऐसे करो, वो कहते, आपको पूछना होगा आप क्या चाहते हैं।
ये शिफ्ट है एक्चुअली में।
हाँ, ये पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ता है। क्या पेरेंट्स को पूछना है, माँ को बच्चे से पूछना है, बेटा आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, फिर ऐसे बेटे से पूछना पड़ेगा आपकी क्या इच्छा है, आप अंदर से क्या, आपके मन में क्या आ रहा है, आपके दिल से क्या आ रहा है, आवाज क्या आ रही है, तो अपनी बात बताएगा कि मेरे मन में ऐसा आ रहा है, आई एम फीलिंग कंफ्यूज्ड, मैं क्या करूं क्या ना करूं, फिर पेरेंट्स को गाइड करना है, उसके बाद उसको जो पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस है उसके अनुसार उसको गाइड करना है
जी,
फोर्स नहीं करना है, उसमें भी ऑप्शन देनी है कि बेटा ऐसे करो तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है मेरे अनुभव में, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि मैंने ऐसे किया औरों का साथ मुझे अनुभव हुआ तो ऐसे उसका रिजल्ट, अधिकतर रिजल्ट ऐसा मिलता है. और ऐसा अगर करेंगे तो इसका रिजल्ट, ये पॉसिबिलिटीज हैं. डोंट से कि यही ये होगा ही.
करेक्ट.
कई बार हम ऐसे बोल देते हैं पेरेंट्स, तुम ये कर रहे हो ना इससे जरूर फेल हो गई तुम्हारी सक्सेस, तुम,
क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस उस पर थोप रहे हैं.
थोपना नहीं है, मतलब सजेस्ट करना है कि नहीं इसमें ऐसा हो सकता है आपके साथ, इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा हो, स्टिल वो ट्राई करना चाहता है तो ट्राई करे.
करेक्ट.
यू कैन गो फॉर, आई एम विद यू. ये पेरेंट्स को कंफर्ट देनी होती है कि आई एम विद यू. आप अगर ये भले ये गलत चीज जो आप मेरे हिसाब से गलत है, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो करिए, आई एम विद यू.
दिस इज सो ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब. मैं एज अ, मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि जब टीन का जो समय होता है तब हम ऑनेस्टली मैं बताऊँ बहुत कंफ्यूज होते हैं हम, क्योंकि दुनिया एक नई तरीके से हमें नज़र आने लगती है, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो अलग अलग इन्फ्लुएंसेस से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, हम भी उनके आभा मंडल में रहकर उनके ऑरा को भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. घर में रहने से ज़्यादा हमें बाहर रहना पसंद आने लगता है, शायद फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना या घूमना फिरना या क्लासेस जाना ही, कोई भी तरह की चीज़ें जो होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हमें करने में अच्छा लगता है. तो बेसिकली घर से बाहर की दुनिया हमें टीन्स में नज़र आने लगती है, शुरुआत वहीं से होती है. तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं एज अ पेरेंट कि आपको इधर जाना है, आपको इधर नहीं जाना है, आपको ये करना है, आपको नहीं करना है, ये किस हद तक सही है? मतलब उनकी ज़िंदगी के जो फैसले हैं ये उन्हें करने दिया जाए या उन पर थोड़ी सी रोक लगाई जाए या उन्हें सजेस्ट, मैं थोड़ी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं टीनएजर्स जब उस समय पर होते हैं, आपका क्या कहना है?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे को इसमें जो मैंने बताया ना 11 साल की उम्र तक ऑर्डर कर सकते हैं.
करेक्ट.
11 साल के बाद आपको फ्रेंडशिप का बिहेवियर करना पड़ेगा.
बिल्कुल.
यू हैव टू एक्ट लाइक ए फ्रेंड.
ओके.
मतलब माता पिता को माता पिता नहीं बनना है, उसके बाद फ्रेंड बन के रहना है. फ्रेंड जैसे पूछते हैं ना आपस में, तुमको तुझको क्या अच्छा लगता है, तू कैसे करना चाहता है, तू ऐसे कर, मेरे ख्याल ऐसे करके देखना. तो दैट वे नॉट एनफोर्सिंग बल्कि गाइड करने की कोशिश, एक गाइड, मतलब एक ऑनेस्ट गाइड बन करके, फ्रेंड बन के उसके साथ इंटरेक्टिव होके उसके साथ खेलना उसके साथ, ताकि उसको बच्चे को ऐसा घर में वातावरण ऐसा रखें उसके लिए कि उसको घर में अट्रैक्शन रहे.
करेक्ट.
नहीं तो क्या होता
है, क्योंकि घर में रहने का मन ही नहीं करता, मम्मी डैडी डांटते रहते हैं, क्यों
माँ डांट रही है, बाप डांट रहा है, बड़ा भाई गाइड कर रहा है, बहन बड़ी बहन कह रही है तू गलत है, तू ऐसे नहीं कर, तू ऐसे नहीं कर, हर आदमी शिक्षा दे रहा है.
करेक्ट.
और बच्चों को शिक्षा पसंद नहीं होती है, 11 साल के बाद शिक्षा अच्छी नहीं लगती है.
करेक्ट.
वो अपनी बात करना चाहता है, अपने नए ढंग से, ही वांट्स, ही और शी वांट्स टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स.
करेक्ट.
संसार को देखना चाहता है, समझना चाहता है. तो उसमें माँ बाप को गाइड करने की आवश्यकता है, बड़ों को गाइड करने की आवश्यकता है, ना कि माँ बाप को फोर्स करने की. जहाँ माँ बाप फोर्स करते हैं बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, अंदर की डिमांड कुछ और कह रही है और पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं दूसरी तरफ.
करेक्ट.
तो कन्फ्यूज हो जाते हैं. हाँ, बच्चों को मैंने बताया था पहले भी कि पेरेंट्स अपने एग्जाम्पल से, अपने एग्जाम्पल से, बड़े भाई बहन अपने एग्जाम्पल से उसको बच्चों को सिखा सकते हैं कि अपने आप, हम जैसे कोई भी बच्चों को कभी ज्ञान सिखाना नहीं, ज्ञान नहीं सिखाना चाहिए. ज्ञान में कोई परमात्मा का नॉलेज, मेडिटेशन के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, है ना?
अच्छा.
बोलना नहीं चाहिए, कर्मों से सिखाना चाहिए. बोल के सिखाने के बजाय कर्मों से सिखाना बहुत जरूरी है.
ओके.
कि हमारे कर्म ऐसे हों, ऐसे बहुत शांति से हम बात करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, सरल लाइफ रहती है हमारी, इजी गोइंग होते हैं, हमारे साथ पेशेंस होती है, हम संतुष्ट रहते हैं, बहुत डिजायर्स हमारी नहीं होती हैं, हम दूसरों की व्यू पॉइंट देख पाते हैं, बच्चे का व्यू पॉइंट देख रहे हैं, अपनी बात नहीं थोप रहे हैं, हमारे अंदर उसके लिए हमारे अंदर समाने की शक्ति है, हम समा पा रहे हैं, कुछ गलत हो जाता है सहन कर पा रहे हैं, रिएक्शन नहीं कर रहे हैं. तो वो बच्चे, वो हमारे अंदर चीज़ें होती हैं ना, वो बच्चे को इम्प्रेस करती है.
ओके.
मतलब उससे बच्चा दिखता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए शॉक अब्जॉर्बर है. मतलब बच्चा क्या चाहता है घर से, क्या चाहता है, शॉक अब्जॉर्बर की. वो गलती करके आए तो माँ बाप आके डांट नहीं लगाए, उसके शॉक को अब्जॉर्ब कर ले.
करेक्ट.
बच्चे को लगे कि नहीं, मेरे माँ बाप जो है मेरे लिए दे आर द हीलर्स फॉर मी. मैं गलती करके आऊँ, क्योंकि वो गलती करने की उम्र है.
कि डॉक्टर साहब, मैंने नोटिस किया है कि टीन एज जो होता है उसके अंदर में हम बहुत एक्सपेरिमेंटिव होते हैं चीज़ों को लेकर। शायद अगर स्कूल में भी कुछ बातें हो रही होती हैं, अगर बायोलॉजी है जैसे सोशियोलॉजी है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर में भी हम एक्सपेरिमेंटिव होते हैं। अच्छा ये नहीं तो ये कैसे, फिर वो नहीं तो, बहुत क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बहुत सारे होते हैं। और जैसे एडिक्शंस को भी उस वक्त ही सेवन किया जाता है, ट्राई किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक 80% लोग उसी समय पर उसको ट्राई कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे ये भी ट्राई करके देखते हैं, ये भी ट्राई करके देखते हैं। उन्हें ये तब पता नहीं होता कि वो एक एडिक्शन है, कि मैं अगर ट्राई कर रहा हूँ ये मुझे लत लग सकती है इस चीज़ की।
मतलब बच्चे का न्यू एक्सपीरियंस जैसे ना पीयर प्रेशर होता है ना।
एग्जैक्टली
तो मैंने किया, तुम करके देखो ना।
करेक्ट,
मैंने एक स्मोक करके देखा, तुम भी करके देखो, कितना अच्छा लगता है, हाउ रिलैक्स यू फील,
करेक्ट,
हाउ नाइस यू फील, यू फील लाइक फ्लाइंग ना, ऐसा लगता है। बच्चे आपस में बात करते हैं, तुम करके देखो ना, तो बच्चा एक्चुअली वो करने वाला अकेला महसूस कर रहा होता है, ही वांट्स ए पार्टनर, ही और शी वांट्स ए पार्टनर,
करेक्ट,
तो वो चाहता है कि मैं भी करूं, मेरे को भी साथी को मिले।
ऑन द टॉप ऑफ इट, जो ग्रुप का, सपोज सारी ग्रुप कर रही है और आप अकेले हो जो नहीं करते हो, तो आप लेफ्ट आउट फील करते हो। और कई बार आपको ग्रुप का हिस्सा भी नहीं बनाया जाता मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आप अलग हो, तो वो जस्ट बिकॉज आप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, हैपनिंग ग्रुप का, लाइक सो कॉल्ड हैपनिंग ग्रुप का, तो आप उसके वजह से आप एडिक्शन में चले जाते
हो। यू आर राइट, वेरी राइट। आई थिंक हमको इसमें यही है कि इसमें एक हमारी गाइडेड केयर या मतलब केयर करना जैसे होता ना, एक बच्चा चल रहा, छोटा बच्चा चल रहा सीख रहा होता ना, तो माँ खड़ी खड़ी देखती रहती है कि चल रहा है, वो गिरने भी देती है पर ज्यादा चोट तो नहीं लगी, वो देखती रहती है। वो फिर अपने आप गिरता है, फिर अपने आप उठ के खड़ा हो जाता है, फिर चलता है, फिर ज्यादा चोट लगती है तो भाग के जाती है, नहीं तो दूर खड़ी रहती है, देखती रहती है। ऐसा ही कुछ करना होता है माँ बाप को और बड़ों को कि बच्चा चल रहा है, ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो ज्यादा उसकी जाके हेल्प करने का, ना कि उसको ज्यादा गाइड करने का। तो ये हमें आई थिंक ये इसमें क्या है, इसमें एक तो इम्पोर्टेंस ये वाली बात, दूसरी बात क्या है, जो 3 से 11 साल की उम्र है वो एक पैसिव फेज है, उसमें बच्चों को मेडिटेशन सिखा सकते हैं।
अच्छा,
11 साल के बाद मेडिटेशन को सिखाने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो कोशिश करो कि 3 से 11 साल की उम्र में बच्चों को मेडिटेशन करना सिखा दो, उसकी इम्पोर्टेंस सिखा दो, फूड हैबिट्स ठीक कर दो, सिखा दो बच्चे को, क्योंकि हमारा मन जो है बच्चे के समान होता है, मन को आप फोर्स करेंगे ना कोई चीज़ तो जबरदस्ती वो थोड़ी देर करेगा, फिर बाद में उसके अपोजिट करेगा। तो बच्चे को हर बात का मतलब बच्चा पराठा खाता है, पकौड़ा खाता है, समोसा खाता है, तो बच्चे को बता बेटा इसमें ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल होता है, वो एलडीएल ऐसा होता है, उसकी शेप ऐसी होती है, वो हमारी जो खून की धमनियाँ हैं उसमें जाके चिपक जाता है, धमनियाँ चिपक जाएंगी तो अंदर से कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, अंदर से ब्लॉक हो जाती हैं जल्दी उम्र में, फिर दिमाग काम नहीं करता है, मेमोरी काम नहीं करती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये फिर इससे ही होता है, इससे नुकसान होता है, फिर अगर हम इसके बजाय फल खाते हैं तो उससे फ़ायदा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से ऐसा होता है, शुगर ज़्यादा खाने से क्या नुकसान होता है ना, हमें टाइम पे खाना खाना जरूरी क्यों है, सुबह नाश्ता इस समय करना चाहिए, लंच इस समय, डिनर, हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसकी इंपॉर्टेंस बच्चे को बतानी चाहिए, कि अंदर की जो घड़ी हाइपोथैलेमस में लगी है जिसको बायोलॉजिकल जैविक घड़ी कहते हैं, वो जैविक घड़ी के अनुसार हम अगर टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, जैसे हमें बचपन की बातें याद हैं कि हमारे माता पिता ने हमेशा हमें 10 बजे उठा दें, सुला देंगे, मतलब कितना भी कुछ हो, एग्जाम डेविज भी होंगे तो कहेंगे बेटा सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह जल्दी उठाएंगे, 10 बजे हम सो जाते थे और सुबह 4 बजे हम उठा दिया जाता था हमको, ये हमारी हैबिट मतलब पेरेंट्स से बचपन से डाली थी, बचपन में वो हमें जबरदस्ती करके भी सुला देंगे, हम पढ़ना चाहते हैं 1 घंटा और, कल एग्जाम है, नहीं बेटा सो जाओ, हम तुमको 4 बजे उठा देंगे, तुम सुबह उठ के पढ़ लेना, मतलब ये हमें एश्योरेंस देते थे और उठा देते थे, तो हमें एक राइट हैबिट, हमारे अंदर जो क्लॉक कहते हैं 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, तो वो 10 बजे हमें सो जाना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, जितने भी टॉपर्स हैं, मैं भी अपने कॉलेज में अपने स्कूल में टॉपर रहा हमेशा, और मैं देखा मैंने कभी भी 10 बजे के बाद मैं नहीं पढ़ा, और कभी फिर सुबह 4 बजे हमेशा उठा हूँ, और सुबह के टाइम जो हमारे जो क्लॉक वो कहती है उसमें मेडिटेशन करने का समय है, उसमें प्लानिंग करने का समय है, कोई चीज मेमोराइज करने का भी समय है, उसमें एक्सरसाइज करने का भी समय है, काम भी करना तो एफिशिएंटली काम करने का समय, नाश्ता करने का समय है, लंच करने का समय, हर चीज का समय है, और वहां पर जैसे मैं देखा अगर सुबह जो हम अमृत वेला कहते हैं 4 से 5 के बीच में, तो 4 बजे हम आधा घंटा या मेडिटेशन कर लेते हैं और बच्चों को शुरू से अगर आदत डाल दें क्योंकि उनसे उनका हार्मोन ऑर्केस्ट्रा ठीक हो जाएगा।
yeah.
अगर बच्चों को उठते ही हम कहें कि 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, हो सके तो आधा घंटा उस मेडिटेशन को शुरू शुरू में 10 मिनट शुरू करें, बाद में आधा घंटा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि 20 मिनट ऐसी अनुभूति, आनंद की अनुभूति जो आत्मा और परमात्मा के मिलने से होती है, उससे उसका हार्मोन ऑर्केस्ट्रा बिल्कुल ठीक हो जाता है,
करेक्ट,
रीसेट हो जाता है फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। और उसके बाद बच्चा प्लानिंग करे कि मुझे आज सारा दिन कैसे बिताना है, सुबह आधा घंटा उसको मेडिटेशन करने की आदत पड़ जाए
जी,
तो वो बेसिकली उसमें से 20 मिनट वो आनंद की स्थिति का अनुभव करने लग जाए
जी,
तो उसके सारे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और पिनियल से इतने हार्मोनाइज्ड वे में निकल जाएंगे जो आपके पूरे हार्मोन सिस्टम को, हार्मोन ऑर्केस्ट्रा को सेट कर, रीसेट कर देंगे, और उससे आपकी मन की और तन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। और बच्चा मेडिटेशन के बाद एक घंटे अगर पढ़ता है तो 1 घंटे में वो 4 घंटे जितनी पढ़ाई कर सकता है।
अच्छा।
और वो उसको याद रहेगा। और बच्चा 10 बजे से रात में पढ़ता है, 10 से 2 बजे तक पढ़ता है, तो 4 घंटे में जितनी पढ़ाई करेगा उसमें से उसको 1 घंटे जितना भी याद नहीं रहेगा। हमने कहा सारी रात पढ़े, पर आउटपुट क्या हुई, एग्जाम में देखेगा तो एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसको लिखनी, उसको याद ही नहीं आएगा, वाइवा होगा, वाइवा में बता नहीं पाएगा,
क्योंकि आधा समय तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई है रात को,
वो क्योंकि गलत टाइम पे पढ़ रहा है,
प्लस गलत टाइम पे पढ़ रहा है,
अपनी क्लॉक के अगेंस्ट उसकी एफिशिएंसी खत्म कम हो गई है। नाउ ही हैज टू स्पेंड मोर एनर्जी टू हैव लेस गेन। और सुबह 1 घंटे में पढ़ेगा, 1 घंटा जो उसमें पढ़ेगा उसकी ब्रेन वेव्स है ना, ब्रेन रिदम है, वो स्लो होगी। वो अल्फा रिदम में या थीटा रिदम में होगा, और वो थीटा रिदम में जो पढ़ेगा तो उसकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा होगी, वो रिटेनिंग पावर ज्यादा होगी, उसमें जितना पढ़ेगा उसका 90% रिटेन कर लेगा, राइट। और रात में अगर पढ़ेगा, रात में ब्रेन फ्रीक्वेंसी हमारी यूजुअली बीटा प्लस या सुपर बीटा होती है, 10 से 2 के बीच में, तो उस समय जब बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ने में उसकी जो रिटेनिंग पावर जो होगी वो 30% ही होगी, 20% ही होगी।
अरे वाह,
आप समझ सकते हैं कि आपने पढ़े 50 पेज पढ़ लिए, आपको रिटेन कितना होगा, मुश्किल से 10 पेज होंगे, 50 पेज 10 पेज ही रिटेन हुए,
कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है।
और आपने सोचा मैंने पढ़ लिया है
या।
पर जब एग्जाम आएंगे या कोई नेक्स्ट डे टीचर पूछेगा आपको याद ही नहीं आएगा।
ओके।
इसे रात को कभी बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो इस तरह से एक आदत पड़ जाएगा बच्चे को। ये 3 से 11 साल की उम्र की बात है
जी,
वो फॉर्मेटिव ईयर्स है 3 से 11 साल, वो फाउंडेशन है आगे टीन्स के लिए,
करेक्ट।
अब बच्चे को 11 साल के बच्चे को 12 साल 13 साल के बच्चे को कहने जाओगे बेटा रात को नहीं पढ़ो, वो जो है वो नहीं मानेगा। क्योंकि अपने पीयर्स के साथ वो पीयर्स कर रहे हैं वो भी करेगा। और अगर उसको आपने 3 से 11 साल की उम्र सिखा दिया है सुबह जल्दी उठना, सुबह उठ के पढ़ना, होमवर्क करना, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, पर नहीं करना आता है, हैबिट पड़ जाती है, शाम टाइम पे सो जाना, तो वो अगर टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सैर करना, गेम्स में सपोर्ट, बच्चों को स्पोर्ट्स में एक्टिव कराना चाहिए पेरेंट्स को,
करेक्ट,
मतलब दे शुड टेक स्पोर्ट्स एज ए रेगुलर एक्टिविटी। बच्चों को 1-2 घंटा खेलने देना चाहिए, ट्यूशन भेजने के बजाय खेलने के लिए भेजना चाहिए,
क्योंकि ग्रुप्स के बीच में भी वो जब रहते हैं तो उनको ग्रुप की जो टीम स्पिरिट है वो सीखने को मिलती है।
yes, yes.
खुद को कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन के बारे में सीखने को मिलता है,
फिजिकल, जब फिजिकल बॉडी प्लस टीम स्पिरिट प्लस कोऑपरेशन आपस में, बिकॉज टीम पूरी टीम होती है ना,
बिल्कुल,
या कोई भी टीम हम खेलते हैं
साथ लेके
चलना, वहाँ पे काफी सारी चीजें बच्चा सीखता है।
yeah.
तो इसलिए हमें बच्चे को शुरू से ऐसे उसे एडवाइस करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फॉर्मेटिव अगर हमने ठीक से बिताए हैं तो हमारा बच्चा जो है 11 साल की उम्र के बाद वो ठीक से बिहेव करेगा।
wow.
और वो जो रिवार्ड्स उसको मिले ना 3 से 11 साल
के अनुभव, 11 साल में
एक्सपीरियंसेस है ना, वो उसको पीयर प्रेशर से बचाएगा।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आई थिंक आपने जो इतनी सारी खूबसूरत बातें आज हमें बताई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उसका सारांश ये है कि 3 से 11 साल का जो उम्र होता है पेरेंट्स के लिए वो एक क्ले की तरह होता है, एक हर बच्चा जो होता है वो एक क्ले की तरह होता है, जिस तरह से आप उसे मोड़ देंगे वो उसी रूप में ढल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, और आज हमने बहुत सारी वैल्यूबल बातें जानी आपसे, थैंक यू फॉर द जर्नी। ओम शांति। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने कई सारी बातों को जाना, जिसमें मुझे ऐसा लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एज अ पेरेंट आपको ये जानने की ज़रूरत है कि 3 से 11 साल का जो समय होता है आप एक मूर्तिकार की तरह होते हैं, आप जिस तरह से मूर्ति को बनाना चाहते हैं वो आपके हाथ में है, आपका बच्चा, उसकी पूरी जिंदगी आपके हाथ में है। आप घर का माहौल ऐसा बनाइए, अपनी स्थिति को ऐसा बनाइए, पूरे वातावरण को ऐसा बनाइए जिससे वो बच्चा होलसम ग्रोथ के साथ में आगे बढ़े। साथ ही साथ अगर आप मेडिटेशन को, राजयोगा मेडिटेशन को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, और साथ ही साथ 3 से 11 साल की उम्र में बच्चों को भी वो मेडिटेशन सिखाएंगे, ट्रस्ट मी, आपको महसूस होगा कि आपका जो बच्चा है वो एक ऐसी पर्सनालिटी बनेगा जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। और यही तो हमारा लक्ष्य है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।